स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक अहम उद्बोधन है, संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। आज हम इसी के मूल विचारों को समझने की कोशिश करेंगे।
जी,
हमारा मकसद है पूज्य गुरुदेव की उन चिंताओं को सामने लाना जो संस्कृति के पतन से जुड़ी हैं, और इसका हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इस पर बात करते हैं।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने संस्कृति के पतन को समझाने के लिए एक बहुत ही सशक्त एक रूपक इस्तेमाल किया है। अतीत में जो पतन हुआ उसकी तुलना वो सीता जी के अपहरण से करते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां संस्कृति धर्म के बाहरी आडंबरों और गलत मत मतांतरों के कारण मानो वनवास में चली गई।
अच्छा, वनवास में?
हाँ, जैसे मध्यकाल में सांप्रदायिकता गढ़ी, धर्म के नाम पे भी अजीब चीजें होने लगी। उन्होंने पंचमकार जैसी कुछ प्रथाओं का जिक्र किया, मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और हिंसक यज्ञों का भी। वो इन्हें सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास मानते थे।
लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आज की जो स्थिति है, जिसे वो लंका का जमाना कहते हैं, वो तो उससे भी ज्यादा गंभीर है।
हाँ, कहीं ज्यादा।
ये लंका का जमाना क्या है? यहाँ सिर्फ विकृति नहीं बल्कि संस्कृति का एक तरह से विरोध है, नास्तिकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो?
देखिए, लंका का जमाना आज का ये भौतिकवादी और खासकर नास्तिक युग। पूज्य गुरुदेव का इशारा है कि यहाँ धर्म को पिछड़ापन या कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा अफीम की गोली, वैसा समझा जाने लगा है।
अच्छा।
हाँ, और बड़े दार्शनिक स्तर पर भी, जैसे नीत्से ने कहा ईश्वर मर चुका है। फिर विज्ञान और मनोविज्ञान की कुछ व्याख्याएं आई, जैसे डार्विन का विकासवाद, फ्रॉयड का मनोविश्लेषण। गुरुदेव ने चेताया कि कैसे इनके आधार पर जो हमारे नैतिक बंधन हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं जैसे ब्रह्मचर्य या पतिव्रता धर्म, उन्हें अप्राकृतिक या मानसिक दमन बताकर खारिज करने की कोशिश हुई।
उन्हें दिमागी बीमारी की तरह देखा गया।
हाँ, कुछ वैसा ही। और इससे हुआ क्या कि स्वेच्छाचार को बढ़ावा मिला, मानो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही ना रह जाए।
तो फिर पूज्य गुरुदेव की सबसे बड़ी चिंता क्या थी इस लंका के दौर से? क्या ये सिर्फ मजहबी आस्था का सवाल था?
नहीं नहीं, उनकी चिंता इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये सीधे सीधे इंसान के वजूद और उसके सुख दुख से जुड़ी है। वो परलोक या स्वर्ग मुक्ति से ज्यादा इस दुनिया की, इसी जीवन की बात कर रहे हैं। उन्हें डर था कि अगर संस्कृति खत्म हुई तो परिवार टूट जाएंगे।
परिवार टूट जाएंगे?
हाँ, पति पत्नी के रिश्ते वैसे ही बिखर सकते हैं जैसे जानवरों में होता है। कोई पक्का घर परिवार नहीं, कोई गहरा भावनात्मक लगाव नहीं।
ये तो समाज की नींव पर ही चोट है। क्या उन्होंने इसके कुछ उदाहरण भी दिए थे?
बिल्कुल दिए। उन्होंने पश्चिमी देशों का, खासकर यूरोप का जिक्र किया। कहा कि वहाँ उनके हिसाब से शादियाँ ज्यादा अस्थायी हो गई हैं। माँ बाप और बच्चों में वो पहले जैसा भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा। बच्चे बड़े होकर माँ बाप से अलग, और अगर सिर्फ पैसा और तथाकथित बुद्धिवाद ही समाज का आधार बन गया तो फिर जो बूढ़े हैं, कमजोर हैं,
हाँ, उनका क्या होगा?
उन्हें अनुपयोगी समझकर बोझ माना जा सकता है। उन्होंने एक बड़ा मार्मिक उदाहरण दिया बूढ़े बैल का, जिसे काम का न रहने पर कसाई खाने भेज देते हैं। और चीन में वृद्धों के साथ कथित बर्ताव का हवाला देते हुए चेताया कि ये उपयोगितावाद मानवीय रिश्तों को कैसे खत्म कर सकता है।
और ये जो भौतिक समृद्धि है, जैसे अमेरिका का उदाहरण आया कि वहाँ आमदनी ज्यादा है, क्या वो जीवन को सुखी बनाती है?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि अमेरिका जैसे अमीर देशों में भी देखिए मानसिक तनाव, टेंशन कितना ज्यादा है, अकेलापन है, लोग नींद की गोलियों पर जी रहे हैं।
हाँ, ये तो सुनने में आता है।
और मनोरंजन भी कैसा सतही, खोखला, जैसे कैबरे डांस वगैरह का जिक्र किया। वो इसे दानवीय संस्कृति कहते हैं। बाहर से चकाचौंध, अंदर से खालीपन, डर और अर्थहीनता। भौतिक सुख है पर मन में शांति नहीं, संतोष नहीं।
और इसका अंत कहाँ हो सकता है?
इसका अंत वो कहते हैं आपसी संघर्ष में हो सकता है। जैसे यादवों का उदाहरण दिया उन्होंने कि कैसे वो आपस में ही लड़ मरे। डर ये है कि संस्कृति के बिना इंसान पहले दिमागी तौर पर एक दूसरे का शोषण करेगा और फिर शायद शारीरिक हिंसा पर भी उतर आए, जैसे जानवर लड़ते हैं। संस्कृति ही तो है जो हमें इंसान बनाती है, हमारे रोज के जीवन में प्यार, मोहब्बत, सहयोग लाती है।
ये तो वाकई बहुत गंभीर तस्वीर है। तो क्या पूज्य गुरुदेव ने कोई रास्ता भी बताया इस लंका से संस्कृति रूपी सीता को वापस कैसे लाएं?
ही होगा, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये काम आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आज का ये जो भौतिकवादी और नास्तिक रावण है वो बहुत ताकतवर है और समाज में एक गहरी खाई, एक समुद्र सा बन गया है।
तो फिर ये होगा कैसे? इतने बड़े बदलाव के लिए साधन कहाँ से आएंगे?
यही पूज्य गुरुदेव उम्मीद जगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा मकसद ऊंचा हो, नेक हो और हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से कोशिश करें तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है।
अच्छा, कैसे?
उन्होंने रामायण के ही उदाहरण दिए, जैसे भगवान राम को किन की मदद मिली? साधारण समझे जाने वाले रीच वानरों की। पत्थर पानी पर तैरने लगे, ये प्रतीक है कि साधन कम भी हो तो बड़ा काम हो सकता है। हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया, यानी असाधारण हिम्मत और कोशिश कामयाब हुई। उनका विश्वास था और इतिहास भी ये दिखाता है कि नेक इरादे वालों को जो कष्ट सहने को तैयार हैं, उन्हें दैवीय मदद जरूर मिलती है।
सार ये है कि पूज्य गुरुदेव के लिए संस्कृति को बचाना सिर्फ कोई पुरानी परंपरा निभाना नहीं है।
जी नहीं,
बल्कि ये इंसानियत के भविष्य के लिए, दुनिया में शांति के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुख के लिए बिल्कुल जरूरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है।
हाँ बिल्कुल। और आखिर में पूज्य गुरुदेव एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वो भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है, त्यागवाद, मतलब दूसरों के लिए त्याग करना, उसे पश्चिमी भोगवाद के सामने रखते हैं जहां इंद्रिय सुखी सब कुछ है। तो सवाल ये है कि क्या आज हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, यानी जो हमें अपने लिए बुरा लगे वैसा दूसरों के साथ न करें? क्या इन सिद्धांतों को जीवन में उतारकर हम संस्कृति के अच्छे मूल्यों को फिर से मजबूत कर सकते हैं और इस दानवीय संस्कृति के असर से बच सकते हैं?
ओम शांति।